आज की बात। श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बदले हुए अंदाज पर शुरू होने वाली बहस की। आरएसएस की छवि ऐसे कट्टर हिंदूवादी संगठन की है जो मुसलमानों और ईसाइयों को कदापि सहन नहीं करता। इस संगठन के बारे में कहा जाता है कि वो भारत को बहुलतावादी देश नहीं देखना चाहता। उसे भारत का वर्तमान संविधान पसंद नहीं है। वो भारत के राष्ट्रध्वज के रंगों से सहमत नहीं है। मगर हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसे बयान दिए जिससे ये बहस शुरू हो गई कि क्या समय के साथ साथ आरएसएस अपने भीतर बदलाव ला रहा है। भागवत ने कहा कि संविधान सम्मत आरक्षण को आरएसएस का समर्थन है और रहेगा। आरक्षण कब तक चलेगा, ये जिन्हें दिया गया है वो जब तक चाहेंगे तब तक चलेगा। आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के इस बयान की तुलना बिहार विधानसभा चुनाव के पहले के उनके बयान से की जाए तो ये 180 डिग्री का बदलाव है। भविष्य के भारत को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना दृष्टिकोण सबके सामने रखने के लिए दिल्ली में 3 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया था। मोहन भागवत ने मुसलमानों के बारे में भी बयान दिया।
हिंदू राष्ट्र है, इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। हाँ, उसको आप हम जैसा कहते वैसा हिंदू मत कहो, चलेगा। आप उसको भारतीय कहो, हम आपके कहने का सम्मान करते हैं।
स्वतंत्रता आई तो समता का लोभ होता है, और समता लाने गए तो स्वातंत्र को संकुचित करना पड़ता है। एक साथ दोनों लाना है तो बंधुभाव की आवश्यकता है, और वो बंधुभाव ही धर्म है। लेकिन मेरे हृदय की भावना यह है कि भारतवर्ष में जो है वो सब हमारी भाषा में, वो अपने आप को कहे ना कहे उनको स्वतंत्रता है, और दूसरा कुछ कहते हैं हमको उसमें कोई गिला शिकवा नहीं। हमारे मन के अपनत्व को वो कम करने वाली बात नहीं है, लेकिन वो सब एक पहचान के लोग हैं राष्ट्र के नाते, हम उसको हिंदू पहचान कहते हैं।
उनको सलाह चाहिए तो वो पूछते हैं, अगर हम दे सकते हैं तो हम देते हैं, परंतु उनके राजनीति पर हमारा कोई प्रभाव नहीं, सरकार की नीतियों पर हमारा कोई प्रभाव नहीं है। वो हमारे स्वयंसेवक है, उनको विचार दृष्टि सब मिली है, वो भी समर्थ है अपने अपने कार्यक्षेत्र में उन विचारों को प्रत्यक्ष करने के लिए।
मोहन भागवत के इस बयान को भारत में अलग अलग गलियारे शक की निगाह से देख रहे हैं। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और विचारक योगेंद्र यादव भी आरएसएस पर गंभीर सवाल उठाते हैं।
वन इज व्हाट दे डू ऑन ग्राउंड, सेकंड इज द स्टेटमेंट्स दे मेक ऑन पेपर, एंड द स्टेटमेंट ऑन पेपर ऑलवेज हैज बीन दैट यस दे आर दैट एवरी वन हु लिव्स इन इंडिया इज अ हिंदू। Hindus can follow different modes of worship, and people who call themselves Muslim have a different mode of worship. That's something they have routinely said. You see, we must remember that people we are dealing with, including the current Sarsangh Chalak of RSS, these are not intellectual giants, to put it mildly. The important statements were made in the past. They are simply repeating and recycling the older statements. To my mind, what relationship they have with the BJP is a non-issue. Every government in the world should have a right to consult someone. If their source of consultation is RSS, that's all right. I personally do think that any outward reach must begin with an inward look. And this may have been a moment for RSS to look within. Have they done so? I'm not sure. One of the things RSS needs to think very seriously about is that its basic ideological tenets are borrowed from Europe. This is a completely imported ideology which belongs more to Germany than to India. Their nationalism, the concept of nationalism is taken from Europe. Their idea of what is Hinduism is nothing but an imitation of Christianity and Islam. So whether RSS really wants to be Indian, before RSS can give anyone else a certificate of who is Indian and who is not, is RSS itself willing to be Indian? That is a question I wish to ask, and I wanted them to reflect upon.
इतिहासकार प्रोफेसर कपिल कुमार का मानना है कि संघ खाई को दूर करने की कोशिश कर रहा है और इस कोशिश को शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए।
द प्रॉब्लम इज यू एक्यूज सम ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन कम्स टू क्लैरिफाई और एक्सप्लेन एंड से दिस इज नॉट वी आर, इंस्टेड ऑफ हैविंग ए डायलॉग एंड टू वेज द गल्फ इन द सोसाइटी, इंक्रीज दैट डायलॉग ऑफ हार्मनी, bringing together each other, instead of going that approach, positive approach, you start taking an approach which further creates a gulf between the aspects.
वरिष्ठ पत्रकार आरती आर जेरठ का कहना है कि संघ कार्यकर्ताओं से उनकी बहुत सी मुलाकातें हो चुकी हैं और संघ के विचारों को अच्छी तरह से वो जानती हैं।
You know, partly what Walter Anderson said about the RSS evolving is correct, but I mean, it's not just evolution. I mean, clearly the RSS is trying to blunt the kind of perception that is being created about the RSS by the opposition, and not just being created today but has been created over the decades. Now the problem for the RSS is that while its leaders may come out on a platform like the one that Mohan Bhagwat is speaking from today and talk about diversity and unity, and you know, Muslims are very much a part of India, and Hindutva means inclusiveness and so on, and it all sounds very good. The fact is that when you go down the line, you hear very different sentiments being expressed, and not just earlier there used to be, like when we used to interact with more junior level workers and loyal and supporters of the RSS, I mean, some of the stuff that they came out with was absolutely shocking, horrifying actually. But I have interacted with plenty of RSS people and it has been quite, sort of shocking to me.
वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ भी RSS की सोच और गतिविधियों के बारे में सकारात्मक विचार नहीं रखते और उनका मानना है कि ये सब कुछ चुनावी फायदा हासिल करने की कोशिश भी हो सकती है।
इतने सालों से जिस विचारधारा को लेकर उनकी वफा है उससे अलग हटने के क्या कारण हो सकते हैं? हमें जो सबसे बड़ा कारण समझ में आ रहा है वो ये है कि उन्हें समझ में आ रहा है, जैसे बीजेपी वालों को समझ में आ रहा है, कि हिंदुस्तान का जो मेजॉरिटी नागरिक है वो डरपोक है और शरीफ है, दोनों है, वो चुप रहा है, वो चुपचाप सहता रहा है, वो अब इनके साथ नहीं है। चाहे वो इनकी फैलाई नफरत की वजह से हो, इनके फैलाए खौफ की वजह से हो, नोटबंदी की वजह से हो, नौकरियां जाने की वजह से हो, महंगाई की वजह से हो, हर फ्रंट पे फेलियर, चाहे विदेश नीति हो जहाँ पर वो फेल हुए हैं उसकी वजह से हो, जो जिसे हम अंग्रेज़ी में एक शब्द है डिसेंट, जो भले लोग हैं भारत के, और ज़्यादातर लोग भले लोग हैं, डरते हैं, अपने अपने ज़िंदगी जीना चाहते हैं, बच्चों के लिए अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हाथों में डंडे पकड़ कर 20-25 लोग लिंचिंग करें, किसी 2-3 लोगों को पकड़ कर पीट पीट कर मार दें, दलितों की पिटाई करें, ऐसा हिंदुस्तान वो नहीं चाहते। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इन्हें महसूस हो रहा है कि वो जो पूरा 95% इस तरह का हिंदुस्तान है, या 95% से भी ज़्यादा इस तरह का हिंदुस्तान है जो शरीफ है, डरपोक है, ज़िंदगी जी रहा है, वो इनके साथ नहीं है। लिहाजा अब ये रंग बदलने की कोशिश हो रही है, लेकिन लोग भूले नहीं हैं। लोग क्या नहीं भूले हैं? लोग ये नहीं भूले हैं कि योगी आदित्यनाथ ने सन 2009 के लोकसभा चुनाव में कहा था, अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी, इशारा किया बाकी लोग बोल पड़े मारेंगे। 10 फरवरी 2015 को योगी आदित्यनाथ ने बनारस में कहा था कि अगर हमें मौका मिले हम तो हर मस्जिद में गौरी, गणेश और नंदी की मूर्ति लगाएंगे।
हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने लंदन में आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर दी। इस पर संघ और भाजपा को भारी आपत्ति हुई। संघ को पहले ही अपनी छवि को सुधारने की चिंता थी, मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना के बाद संघ को अपना बचाव करने की जरूरत और बढ़ गई। प्रोफेसर राम पुनिया अलग अलग विषयों पर अपने विचार रखते हैं, इतिहास के गहरे जानकार हैं, वो भी आरएसएस प्रमुख के बयान को संदेह के दायरे में ही रखते हैं।
उन्होंने जो मुसलमानों के बारे में कहा, जो उन्होंने संविधान के बारे में कहा, जो उन्होंने रिजर्वेशन के बारे में कहा, आर्टिकल 377 के बारे में कहा, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बातें एक धरातल पे उनकी बातों में जो आ रही हैं उसके पीछे ये देखना ज़रूरी है कि वो क्या नहीं कह रहे। जो कह रहे हैं उसमें शायद वो अभी इस परिस्थिति पे आ गए हैं, पर जो नहीं कह रहे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि गुरु गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट में वो पूरा विश्वास नहीं रखते। अब ये एक खुशी की बात है कि अपने जिसके वो उत्तराधिकारी रहे हैं श्री गोलवलकर, उनके कई विचारों से वो असहमति दिखा रहे हैं, क्योंकि गुरु गोलवलकर की ये किताब अभी तक आरएसएस की शाखाओं में एक केंद्रीय पुस्तक के रूप में चली है। खैर, तो ये बातें तो उन्होंने कही, पर इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उन्होंने जो नहीं कहा वो ज़्यादा हमें बताता है। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो प्राचीन हिंदू समाज को वो एक आदर्श समाज कह रहे हैं, उसी समाज में यहाँ जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, और ये वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म के ग्रंथों के आधार पर आई थी, और यही बात डॉक्टर अंबेडकर ने लगातार अपनी लेखनों में अपनी किताबों में सामने रखा। तो पहली बात तो हिंदू समाज के अंदर की जो वर्ण व्यवस्था है उसको वो छुपाना चाहते हैं, इसका दोष वो विदेशियों को देना चाहते हैं, जो अपने आप में झूठ है।
वहीं आरएसएस के समर्थक इतने कट्टर हैं कि वो इस संघ को राष्ट्रभक्ति का मंदिर और इसके विरोधियों को भूत पिशाच कहते हैं। आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है और भारत के अनेक हिस्सों में फैला हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है, लेकिन अल्पसंख्यकों और दलितों सहित अनेक मुद्दों पर उसकी विचारधारा को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं।